जैसे ही आस्तिक ने नेहा जी के गुजरे हुए कल का एक कड़वा सच उनके सामने रखा, नेहा जी के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो गुस्से में आस्तिक को देखने लगती हैं। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ आस्तिक के गाल पर मार दिया, लेकिन आस्तिक को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो नेहा जी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहता है, मार लीजिए, चाहे तो एक और बार मार लीजिए, आपने जन्म दिया है, आपको हक है मुझे मारने का, लेकिन सच्चाई से तो आप भी मुंह नहीं मोड़ सकती माँ। अपने लोगों को और दुनिया को हमेशा यही दिखाया कि आप कितनी बेचारी हैं, कितनी अबला हैं, आपके साथ कितना गलत हुआ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गलत आपने किया है चेतन और बेला की माँ के साथ। सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल मिस्टर रायचंद का रिश्ता पहले आपके लिए आया था, लेकिन आपने बिना देखे ही उस रिश्ते को ठुकरा दिया और तब मिस्टर पुष्कर रायचंद की नज़र गई आपकी दोस्त और आपके घर में काम करने वाली एक सर्वेंट की बेटी पर, वो थी मालिनी। आकर्षण के चलते वो भी उनकी तरफ खिंच गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जहां आपने उनका रिश्ता ठुकरा दिया, वहीं मालिनी का उनके साथ एक रिश्ता बन गया। लेकिन शादी वाले दिन आपने किया एक नया तमाशा। मालिनी के सामने अपनी दोस्ती और जान का हवाला देकर धोखे से मिस्टर रायचंद से शादी कर ली। मालिनी एक मामूली सी नौकरानी थी, इसीलिए अपनी हैसियत जानकर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन आपने अपना असली रंग दिखा दिया। आखिरकार आपने वो हासिल कर ही लिया जिसकी आपको चाह थी, पुष्कर रायचंद की बीवी का दर्जा। लेकिन प्यार कभी वो आपसे नहीं कर पाए, प्यार तो वो हमेशा मालिनी से ही करते थे, इसलिए वो अक्सर मालिनी के पास जाया करते थे, उसके साथ रहा करते थे। मालिनी भले ही दोस्ती के हाथों मजबूर हो गई थी, लेकिन प्यार से वो भी खुद को आज़ाद नहीं कर सकी, और इसी प्यार के परवान चढ़ते हुए मालिनी प्रेग्नेंट हो गई। आपको गुस्सा तो बहुत आया था, इसलिए आपने मालिनी को मरवाने की भी प्लानिंग की, लेकिन तब पुष्कर रायचंद ने आपको धमकी दी कि अगर मालिनी को कुछ हो गया तो वो आपसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। ना चाहते हुए भी आपको मालिनी को जिंदा छोड़ना पड़ा और उसके बच्चों को भी अपनाना पड़ा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देते वक्त मालिनी दुनिया से चली गई और आपको अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी देकर चली गई। आप कई बार चाहती थीं कि उन दोनों की जान ले लें, लेकिन पुष्कर रायचंद के डर के आगे आप कभी ऐसा नहीं कर सकीं। लेकिन एक डर आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहा कि अगर चेतन ने पुष्कर रायचंद की प्रॉपर्टी में अपना नाम कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने बचपन से ही मेरे दिमाग में माफिया लीडर बनने का बीज बोया। आपने मुझे बचपन से यही बताया कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है। आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये सब मेरा है, ताकि चेतन और बेला को कभी कुछ न मिल सके। नेहा जी की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं और उनमें आंसू भर आते हैं। ये उनकी जिंदगी की वो सच्चाई थी जो कभी सामने नहीं आई थी। उन्होंने इस राज को हमेशा अपने सीने में दफन रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस आस्तिक को वो भरोसे से अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहती हैं, वही उनके जीवन का आस्तीन का सांप निकलेगा। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो मालिनी दो कौड़ी की नौकरानी थी, उसकी हैसियत नहीं थी रायचंद खानदान में शादी करने की, और उसके बच्चे वो नाजायज थे। उन बच्चों का इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द एक वारिस पैदा करना है ताकि ये सब तुम्हारे नाम हो सके। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अरुणिमा से प्यार करने से फुर्सत ही नहीं थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज तक मैंने हमेशा तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया है, और तुम मेरे इतने सालों की मेहनत हो, उस एक अरुणिमा के लिए इसे बर्बाद मत करो। ऐसा कहते हुए नेहा जी ने आस्तिक के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने उनका हाथ छटक कर गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा, आपकी सच्चाई आपके सामने रखने का मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं आपके सपनों को पूरा करने की सीढ़ी बनूंगा, बल्कि मैंने आपको सच इसीलिए बताया क्योंकि आपको बताना चाहता था कि आज से मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। आप और मिस्टर रायचंद अब मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेहा जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने गुस्से में कहा, तो उस लड़की के लिए तुम्हें अपनी माँ की परवाह नहीं है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, वो भी उस अरुणिमा के लिए। आस्तिक हंसते हुए बोला, आपके आंसू एक वक्त मुझे बहुत दर्द और तकलीफ दिया करते थे माँ, लेकिन अब नहीं। अब आपके आंसू ना तो मुझे दर्द दे सकते हैं और ना ही तकलीफ, क्योंकि अब मैं आपके बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है ये वही मगरमच्छ के आंसू हैं जो एक वक्त आपने अपनी दोस्त मालिनी के सामने बहाए थे, पर अब इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैंने आपको मौका दिया था मेरे साथ चलने का और मिस्टर रायचंद की दुनिया को छोड़ने का, लेकिन शायद आपके लिए अपना सपना ज्यादा जरूरी है। अब आप क्या करेंगी, क्योंकि अपने सपने को पूरा करने का आपका हथियार अब आपके पास नहीं है। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, आपकी जिंदगी से दूर, मिस्टर रायचंद की इस दुनिया से दूर, इस घुटन भरी दुनिया से दूर, क्योंकि मुझे सुकून सिर्फ मेरी अरुणिमा के पास मिलता है। इतना कहते हुए वो मिस्टर रायचंद की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। नेहा जी ने जब ये देखा तो उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो जल्दी से आस्तिक के सामने आकर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोली, नहीं आस्तिक, तुम पुष्कर जी से कोई बात नहीं करोगे। अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो अभी के अभी जा सकते हो, लेकिन खबरदार जो पुष्कर जी से कोई बात कही तो। लेकिन आस्तिक भी अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे माँ, जब मिस्टर रायचंद मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को धमका सकते हैं तो एक आखिरी बातचीत करना तो मेरा भी हक बनता है ना। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि जिस बेटे के लिए उन्होंने इतने साल माफिया की गद्दी संभाली अब वो उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं है, एक आखिरी अलविदा कहना तो जरूरी है। इतना कहकर वो नेहा जी के पास से गुजर गया और तुरंत लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन इत्तेफाक से पुष्कर जी उस समय अपनी लाइब्रेरी में मौजूद थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनका फोन स्पीकर पर रखा हुआ था और दरवाजे के पास खड़ा सिक्योरिटी हेड भी वहीं था। जैसे ही उसने आस्तिक को देखा तुरंत रोकते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन अभी आप बॉस के पास नहीं जा सकते, वो इम्पोर्टेंट कॉल पर हैं। आस्तिक ने गुस्से में पुष्कर रायचंद की तरफ देखा। वहीं पुष्कर रायचंद ने डेस्क पर रखे फोन की तरफ रुख करते हुए एक शैतानी मुस्कान दी और कहा, नहीं मिस्टर मेहरा, मैं इस बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहता। दरअसल मुझे अब आपकी बेटी की परवाह नहीं है, वैसे भी आस्तिक ने उसे डिवोर्स दे दिया है तो अब उसका रायचंद खानदान से कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं उसकी हिफाजत क्यों करूं। ये बात मैंने आपको शादी तय करते वक्त ही कह दी थी कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत तब तक करूंगा जब तक वो हमारे परिवार के काम आएगी, लेकिन अब वो हमारे लिए बेकार है और अब तो उसका हमसे कोई रिश्ता भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में मैं उसकी कोई हिफाजत कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है। आप अपने तरीके से देख लीजिए कि अरुणिमा की सिक्योरिटी कैसे करेंगे। सामने से अरुणिमा के पिता मिस्टर मेहरा की घबराई हुई आवाज आई, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रायचंद, ये सब क्या हो रहा है? अरुणिमा ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं और ना आस्तिक ने, लेकिन अचानक ये सब क्यों? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी बेटी की हिफाजत करेंगे, आप जानते हैं ना उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है, तो फिर आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी अरुणिमा को अकेला मत छोड़िए वरना वे उसे जान से मार देंगे।